बहुत दूर है, तो वृंदावन में जाने से क्या होगा कि आपका खबर हमको पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए आप जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। क्योंकि अगर मैं बताऊंगी कि आप जगन्नाथपुरी मत जाओ, हाँ इधर ही मेरे साथ नवद्वीप में भी निवास करो, शांतिपुर में भी निवास करो, तो क्या होगा, तो लोग आपकी निंदा करेंगे। हाँ संन्यास लेने के बाद भी घर में ही बैठा है, ये कैसा सन्यासी है, इस प्रकार लोग निंदा करेंगे। तो आपकी माँ होने के नाते उस निंदा को मैं सह नहीं सकती हूँ, तो साथ साथ में आपसे जो विरह है वो भी नहीं सह सकती हूँ। इसलिए आप क्या करो, जगन्नाथपुरी में वास करो, क्योंकि हर साल बंगाल से भक्त लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, और वापस जब आते हैं तो आपका खबर हम तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार सची माँ का निवेदन की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन में इस प्रकार एक ओवरव्यू देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवद्वीप में, मायापुर में। उनके बाद उन्होंने बचपन में बहुत सारे नटखट लीलाएं किया। सबसे पहला यात्रा उन्होंने किया गया, उनका सॉरी सबसे पहला यात्रा उन्होंने ईस्ट बंगाल का गया, ईस्ट बंगाल किए यानी ढाका, उधर जाके वापस आए। फिर आने के बाद फिर वो गए गया वापस, फिर बंगाल आए। उसके बाद संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर होते हुए वो पहुंचे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद वो करीबन 6 साल तक वो यात्रा करने लगे। वो 6 साल के अंतर्गत दक्षिण भारत की यात्रा, उन्होंने 5 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा किया। तो दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके वापस जब आए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, उसके बाद जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन वृंदावन जाने के लिए वो बंगाल से होके जाना चाहते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से होते वृंदावन जाने के लिए जब तक पहुंचे, शांतिपुर तक पहुंचे, शांतिपुर से पहुंचे विद्यानगर पहुंचे, तब इसी बंगाल की इसी नजदीक में इधी नवद्वीप में एक जगह है रामकेली। ये रामकेली ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे। तब सभी लोगों को अचंभित हो रही थी, रामकेली ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों है, क्यों इंतजार कर रहे, किसका इंतजार कर रहे, किसके लिए, किसको मालूम नहीं पड़ रहा था। तो समय जब रामकेली गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, तो उधर के जितने भी हजारों लाखों भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे, उधर श्री चैतन्य महाप्रभु का ख्याति इतना बढ़ गया था कि उधर का जो राजा है, हाँ, तो उनके मन में एक विशेष बात आई, ये कौन है ये सन्यासी, इतने सारे लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं और उनको दर्शन करने के लिए इतने सारे लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, वो तभी जाते हैं जब वो व्यक्ति बहुत दान करता हो। मान लीजिए कोई दान करना बैठ गया, बहुत सारे लाखों रुपए लेके बैठ गया, तो जो भी आता है दान करने बैठते बहुत हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति तो कंगाल है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आ रहे, इसका मतलब जरूर ये महान संत होंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका एक मिनिस्टर था उधर का जो काजी है, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु असल में ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे, क्योंकि वो बचाना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो उधर का जो राजा है नाव सा, वो इनसे राजी नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में कुछ ना कुछ जरूर रहस्य है, इनके अंदर विशेष शक्ति है, ये मुझे लगता है कि ये साक्षात भगवान है। मुसलमान राजा होने के बाद ही वो पहचान गए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो उन्होंने अपने जो मिनिस्टर है नवाब हुसैन शाह ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और पूछा, वो मिनिस्टर कौन थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों से पूछे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये हमने सुना कि हमारे देश में एक महान संत आया, उनका परिचय दीजिए। तब रूप और सनातन नवाब हुसैन शाह को वर्णन करते हैं, ये साधारण सा सन्यासी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तब नवाब हुसैन शाह इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उधर के उस जगह के जो काजी होता है उनको ऑर्डर दिया कि ईर्ष्यावश तुम जाके श्री चैतन्य महाप्रभु को आप डिस्टर्ब मत करो। मुसलमान राजा भी इस प्रकार उनको आदेश देते थे। तब रूप और सनातन गोस्वामी बचपन से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत करीब भक्त थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो गए, लेकिन वेशभूषा अलग करते हुए आधी रात को श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे उनका बेट होता है असलियत में हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, जाके श्री चित्रनार बताते हैं कि आपका जो प्रिय भक्त है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उस समय उनका नाम था दबीर खास और सकार मलिक, ये दोनों आए हुए गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग आए, उनके मिनिस्टर लोग आए आपसे मिलने के लिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका भेंट होता है, तुरंत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो सकार मलिक और दबीर खास साष्टांग प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हम तो नीच जाति के नीच संघिक है, नाना प्रकार की गंदे अवस्था में निवास करते हैं हम, तो मांस मच्छी वगैरह खाते हैं उनसे भी गए गुजरे हैं क्योंकि हम प्रोत्साहन कर रहे हैं लोग, तो आपने तो जगह मुदाय को उद्धार किया, जगह मुदाय मुदाय जो है वो पाप कर रहे थे, वो अपराध कर रहे थे, हाँ सारे प्रकार की पाप कार्य में व्यस्त थे, लेकिन पाप कार्य को वो प्रोत्साहन नहीं कर रहे थे। हम तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मिनिस्टर होने के नाते चांद काजी एक ऑर्डर पास करता है कि इतने गायों को वध किया जाए, हम उनके ऊपर मोहर लगाते हैं, हम उनके कार्यान्वित कर दे, उनका जो आदेश है हम उनको कार्य में परिवर्तन करते हैं, यानी हमारे हाथों के अंदर इतना सारा गंदा कार्य हो रहा है, इतने सारे पाप कार्य हो रहा है, तो जगह मदाई से आप हम नीच है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको उद्धार करो, इस गंदे जो कुएं में पड़े हैं विषय के कुएं में पड़े हैं उससे हमको उद्धार करो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपके बहुत सारे चिट्ठी हमको मिले हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बार बार श्री चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठियां लिखते थे कि हमको इस भवसागर विषयी भवसागर से इसको हमको मुक्त करो, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आपकी चिट्ठियों के जवाब करते देते हुए मैंने एक एक श्लोक लिख के भेजा था, वो श्लोक आपको अपने जीवन में लागू करना है, जब समय आएगा मैं जरूर खबर भेजूंगा कि आप इस भौतिक संसार से या इस विषय जीवन को त्याग करके मेरे पास मेरे शरण में आ सकते हो, लेकिन तब तक आप इस प्रकार अपना जीवन व्यापन करो जिस प्रकार एक स्त्री एक पराय पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, तब वो दूसरों को यानी अपने परिवार वालों को पता ना लगे कि उनका आकर्षण किसी और के प्रति है, वो क्या करती है अपने परिवार में सारे अपने काम का इतना अच्छी तरह से करती है कि लोगों को पता भी ना लगे कि उनका मन जो है किसी और पुरुष के प्रति लगा हुआ है। तो वैसे ही आप अपने भौतिक कार्यकलाप इतना अच्छी तरीके से करो ताकि लोगों को पता भी नहीं लगे कि आपका मन जो है कृष्ण के प्रति है, अंदर ही अंदर कृष्ण के प्रति निष्ठा बना के रखो और बाहर ऐसा व्यवहार करो ताकि आप साधारण से एक भौतिकवादी व्यक्ति हो, तो इस प्रकार अपना निष्ठा बना के रहो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब कृपा प्राप्त होगा जब समय आएगा तब मैं जरूर आपको खबर भेजूंगा, तब आप इस भौतिक कार्यों को त्याग करके मेरे पास आ सकते हो। तो इस प्रकार रूप और सनातन को उन्होंने आदेश दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत रूप और सनातन से मिलके तुरंत अगले दिन निकल पड़े फिर वापस जगन्नाथपुरी। अस्तित्व में श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल होते हुए वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी का निवेदन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्लान बदली कर दिया। सनातन गोस्वामी ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप वृंदावन जाना चाहते हो लेकिन आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, लेकिन वृंदावन इतने सारे लोगों के साथ इस प्रकार नहीं जाया जाता, जनसंघ के साथ नहीं जाया जाता है, वृंदावन भजन करने के लिए जाया जाता है, तो अकेले या कुछ लोगों के निकटतम भक्तों के संग में जाया जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निवेदन सुन के उन्होंने वृंदावन जाने का प्लान बंद कर दिया और केवल कन्हई नाटशाला, उसी बंगाल में मालदा जिले में कन्हई नाटशाला करके रहता है, ये कन्हई नाटशाला जो है उधर कृष्ण के लीलाओं का चित्र हर जगह लगा हुआ है, उधर एक मंदिर है कृष्ण का मंदिर, उधर कृष्ण के लीलाओं का चित्र हर जगह लगाया हुआ है, जैसे हमारे मंदिर में कृष्ण का लीलाओं का चित्र हर जगह लगाया हुआ है प्रांगण में, तो वैसे कन्हई नाटशाला में लगा हुआ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण ने उधर सबसे पहला दर्शन दिया, संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु उधर पहुंचे कन्हई नाटशाला में, उधर कृष्ण साक्षात आके उनको दर्शन भी प्रदान किया। तो जब एक बार पुरी महाराज इधर आए थे हमारे मंदिर में, तब जैसे उधर बैठे तुरंत सारे चित्रों को देखे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कन्हई नाटशाला का जो लीला है उधर जाने का लीला है उन्होंने उनको वर्णन किया था, क्योंकि हमारा मंदिर भी वो कन्हई नाटशाला के जैसा ही है, सारे कृष्ण के लीलाओं का चित्र लगा हुआ है। तो रूप और सनातन बार बार इंतजार कर रहे थे किस प्रकार कब मेरे मुझे खबर आएगा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने का। तो एक दिन ऐसा हुआ, रूप गोस्वामी पाद अपने एक अनुचर को भेज के बोले कि आप पता करो कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ है और मेरे लिए क्या खबर है। तब रूप गोस्वामी को खबर मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है, उनको अभी सरकारी जो नौकरी है पदवी है उसको त्याग करके महाप्रभु से मिलने जा सकते हैं। तब रूप गोस्वामी ने क्या किया, 10,000 सोने की मुद्राएं उन्होंने सनातन गोस्वामी की के लिए रखा ताकि वो जेल से छुटकारा पाके वापस आ सकते। उनकी कहानी हम कल बताएंगे। सनातन गोस्वामी का रूप गोस्वामी पाद ने एक नाव भर के सोने की मोहर लेके आए। उनका पूरा जीवन का उतना कमाई था, उनको आधा भाग किया, आधा भाग को उन्होंने ब्राह्मणों में वैष्णव में बांट दिया। बांटने के बाद जो आधा बचा उसका और दो भाग किया और भाग करके एक भाग को अपने इमरजेंसी आगे फ्यूचर में कुछ खतरा आएगा तो उसके लिए उन्होंने रखा और बाकी आधा भाग को श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया वो अपने परिवार वालों में उनमें बांट दिया। तो इस प्रकार एक योग्य या आइडियल गृहस्थ किस प्रकार अपना जीवन व्यापन करना चाहिए रूप गोस्वामी पाद इस लीला के द्वारा वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस कार्य के इस रूप गोस्वामी पाद का ये अपना धन का बंटवारा के ऊपर व्याख्या करते हुए बताया कि कलयुग में भले ही एक आइडियल गृहस्थ को इस प्रकार करना चाहिए लेकिन कलयुग में सभी लोग गरीब हैं। अगर इस प्रकार करने जाएंगे तो क्या होगा, सबको भिखारी बनना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी आमदनी भक्त बनने से पहले या भौतिक जीवन में जो पाप कार्यों में लोग व्यर्थ करते थे उन्हीं को ब्राह्मणों में वैष्णवों में या प्रचार कार्य के लिए वो उपयोग करना चाहिए। हमारे जो कोई व्यक्ति महीने में कम से कम 5-10,000 रुपए वो खर्चा करता था किसमें, सिनेमा जाने में, होटल जाने में, अलग अलग प्रकार की भौतिक आनंद या इंद्र तृप्ति के लिए कार्यकलापों के वो व्यर्थ फुकट में वो व्यर्थ करते थे। वो सारा धन को अभी भक्त बनने के बाद तो वो सब कार्य बंद हो गया, उन सबको अभी कृष्ण भावना की प्रगति के लिए प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद का कृपा तब प्राप्त होगा। तब रूप गोस्वामी पाद अपने चचेरे भाई अनुपम अनुपम का दूसरा नाम है श्री वल्लभ जिनका पुत्र भी बाद में गोस्वामी बनते हैं। तो अनुपम और श्री वल्लभ या श्री वल्लभ दोनों एक ही है, उनके साथ रूप गोस्वामी पाद पहुंचे। तो समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा सब समाप्त करके वापस क्या कर रहे थे, श्री चैतन्य वृंदावन की ओर जाके फिर वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे रूप गोस्वामी पाद जो है अपने भाई चचेरे भाई के साथ वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो बंगाल से निकल पड़े। तब वो बनारस होते हुए जब वो पहुंचे अलाहाबाद, अलाहाबाद में प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम उधर पहुंचे तब उनको मालूम पड़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अलाहाबाद में रुके हुए हैं। अलाहाबाद में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में है तो रूप गोस्वामी पाद को बहुत प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने देखा दूर से एक बहुत भयंकर सा भीड़ आ रहा है, इतने सारे लोग कृष्ण का नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे थे, सामने श्री चैतन्य महाप्रभु है और जोर जोर से कृष्ण कीर्तन कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है। उधर वर्णन करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आज तक भले ही प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है फिर भी प्रयाग कभी भी वो फ्लडेड यानी पानी से भरा हुआ नहीं था, लेकिन अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रयाग जो है वो डूब गया है। किसके द्वारा डूब गया है, कृष्ण प्रेम से वो डूब गया है। आज तक प्रयाग डूबा नहीं था, तीनों नदियों का संगम होने पर भी तीनों नदियां इतना भयंकर बहती है गंगा सरस्वती और यमुना, तीनों बहने के बावजूद प्रयाग अभी तक उसके अंदर कोई बाढ़ नहीं आया था, लेकिन अभी कृष्ण प्रेम का बाढ़ आ गया क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन की वजह से। तब रूप गोस्वामी पाद और अनुपम दोनों तुरंत वो जाके श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए जा रहे थे लेकिन फिर भी रुक गए क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अगर वो भीड़ के सामने जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे और बाई चांस ऐसा हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किए तो सारे लोग सोचेंगे कि हम बहुत बड़े चढ़े हुए भक्त हैं। लेकिन एक गौड़ीय वैष्णव क्या चाहते हैं, गौड़ीय वैष्णव हमेशा अपने अपने आप को नम्र बना के रखना चाहते हैं, ये प्रतिष्ठा कभी चाहते नहीं गौड़ीय वैष्णव। हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी भी, जब माधवेंद्रपुरी बात को के प्रसन्नता के लिए उनको इच्छा पूरा करने के लिए खीर चोर गोपीनाथ ने क्या किया था, उन्होंने एक कटोरी खीर चुरा लिया था। जब एक कटोरी खीर चुरा लिया था तो एक ब्राह्मण के सपने में खीर चोर गोपीनाथ कि माधवेंद्रपुरी के लिए एक खीर जाके देना, तब वो खीर लेके, खीर का पॉट, मिट्टी का जो बर्तन है कि इसके अंदर खीर था, वो लेके वो ब्राह्मण गए माधवपुरी, माधवपुरी माधवपुरी आप कहाँ हो? तो माधवपुरी जो है उधर मार्केट प्लेस में वो लेटे हुए थे, सोए हुए थे, वो आप बाहर आके मुझे, हाँ मैं माधवपुरी हूँ। तुरंत तो ब्राह्मण उनका पैर पड़े और बोले कि भगवान स्वयं आपके लिए खीर चुराया है, क्योंकि आप खीर खाना चाहते थे तो आप लीजिए। तुरंत माधवेंद्रपुरी ने वो खीर का बर्तन लिया, बहुत आनंद विभोर में उन्होंने भगवान का प्रसाद दिया, और तुरंत उन्होंने क्या किया, मैं अभी का अभी उल्टे रास्ते से इधर उधर से निकल जाऊंगा, शॉर्टकट से मैं बाहर चले जाऊंगा, क्योंकि अगर लोगों को मालूम पड़ जाता है कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराया तो लोग सोचेंगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे पूजा करने लगे, मुझे प्रतिष्ठा आदर देने लगेंगे। तो गौड़ या वैष्णव ये सभी कभी ये सब चीजें नहीं चाहते। तो वैसे रूप को स्वयं पाद ये नहीं चाहते थे कि सभी लोग पहचाने कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं इतना बड़ा भक्त हूं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जालीगन करेंगे तो चुपचाप पीछे रहेंगे। लेकिन बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन समाप्त करने के बाद प्रयाग के संगम में नजदीक एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो है उनको निमंत्रण दिया था प्रसाद के लिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उधर गए तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद तब रूप गोस्वामी और अनुपम ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए तुरंत रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांग प्रणाम करके वो ये फेमस जो मंत्र है, जो प्रणाम मंत्र है चैतन्य महाप्रभु का, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः, ये प्रणाम मंत्र को पहली बार रूप गोस्वामी पाद उच्चारण किया। नमो महावदान्याय, आप महावदान्य हो ना, मैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्ण प्रेम प्रदाय, आप कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हो। कृष्णाय, आप कृष्ण स्वयं हो अभी, लेकिन कृष्ण चैतन्य के रूप में हो, तो ऐसे जो स्वरूप है कृष्ण का, कृष्ण चैतन्य रूप का स्वरूप है, उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने प्रणाम किया, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करके, तो उन्होंने आलिंगन करने के लिए जा रहे थे तो रूप गोस्वामी पाद बोलते, हमको मत छुए, हम तो नीच जाति के हैं, इस प्रकार बोले। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के चरण के ऊपर, उन्होंने सर के ऊपर चरण रखा और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उद्दिष्ट है वो ब्राह्मण को रूप गोस्वामी पाद को प्रदान किया। उसके बाद उसी समय एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण वल्लभ भट्टा उसी प्रयाग में आड़ियला ग्राम में निवास कर रहे थे। तो वल्लभ भट्ट आके श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया कि आप हमारे घर में आइए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को लेके यमुना के नदी के पार करके वो लेके जा रहे थे। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना को देख के, वो काला सा यमुना पानी बह रहा है, तो उनको देख के कृष्ण का स्मरण हुआ, वृंदावन के कृष्ण की लीला का स्मरण हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु भाव व्यवहार होकर नृत्य करने लगे, तुरंत यमुना में कूद पड़े और कैसे भी करके सारे भक्त लोग उनको उठा के फिर नाव में रखे फिर कैसे भी करके श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को संभाले। और ये वल्लभ भट्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के भाव कैसे व्यक्त कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वल्लभ भट्ट को देखे कि उनके अंदर अंदर इतने सारे भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन जबरदस्ती वो रोक रहे थे। लेकिन जितना भी रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे वो कृष्ण के प्रेम की भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन वल्लभ भट्ट को देखे थोड़ा सा उनको शर्माहट महसूस हो रहा था, तो इसलिए ये वल्लभ भट्ट के प्रति इस प्रकार की भावना था श्री चैतन्य महाप्रभु का। उनको देख के उनके पूरे जो वो कृष्ण के प्रेम की भावना है व्यक्त नहीं कर पा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वल्लभ भट्ट के पास उनके घर में जाने के बाद वल्लभ भट्ट को रूप गोस्वामी और अनुपम के साथ उनका भेंट कराया, उनका परिचय कराया। जब परिचय कराया, रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के लिए वल्लभ भट्ट आगे आए। जैसे वल्लभ भट्ट आगे आए रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के लिए, रूप गोस्वामी पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो नीच जाति के, नीच संघ के, तो हमको आप छुए मत, आप छुएंगे तो आपको हम बहुत अशुद्ध है, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो बहुत नीचे जाति के, हम आपके द्वारा स्पर्श करने लायक नहीं है करके बोलते। तो तब ये तो वल्लभ भट्ट तो हैरान हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये तो महान वैष्णव है, क्योंकि हमेशा उनके मुख पे कृष्ण का नाम है, तो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वल्लभ भट्ट को, देखो ये तो इनको ऐसे रहने दो, क्योंकि आप दक्षिण भारत के बहुत बड़े ब्राह्मण हो, आपको ये जो वैष्णव की, गौड़ीय वैष्णव की जो खासियत है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ आचार्य को या वल्लभ भट्ट को बोला कि आप जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है वो उसको आप आगे प्रचार करो, क्योंकि ये गौड़ी वैष्णव का जो खजाना है वो आप नहीं समझ सकते हो। क्या है गौड़ी वैष्णव का खजाना? क्या है वो? है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का दूसरा पहलू क्या है, या वो कृष्ण प्रेम नामक कॉइन का एक साइड में क्या है, वो है नम्रता। तो ये जो गौड़ी वैष्णव की जो नम्रता है, आप वल्लभ भट्ट हो, दक्षिण भारत के बहुत बड़े ब्राह्मण हो, क्योंकि आप जो है गौड़ी वैष्णव की अमानत या संपत्ति को आप नहीं समझ सकते हो। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को बोला कि आप अलग संप्रदाय में आप जुड़ के आप प्रचार करो। हाँ, इसलिए हमको बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय। हाँ, वल्लभ आचार्य जो है, भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत करीब भक्त के, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम का जो भावनाओं को फ्रीली व्यक्त नहीं कर पा रहे थे वल्लभ भट्ट के सामने, तो रूप गोस्वामी पाद की जो नम्रता है वल्लभ भट्ट पहचान नहीं पाए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोला आप शांति से रह जाओ, कोई इनको आप पहचान नहीं सकते हो करके उधर शांत किया। तब वल्लभ भट्ट उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर प्रसाद वगैरह परोसा। तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य को, वल्लभ भट्ट को उन्होंने बोला कि आप आके अपना उनका चरण सेवा का मौका प्रदान किया। तो बाद में उसी समय एक रघुपति आचार्य वो आए, वो आके श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की लीलाओं को वो सुनाने लगे, और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में लीलाएं कर रहे थे। तो उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी बाद प्रयाग संगम, त्रिवेणी संगम के पास उन दोनों का निवास स्वीकार किया, और खास करके वो जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका उनको अच्छा नहीं लग रहा था। भीड़ भाड़ वाला इलाके में जाके संकीर्तन आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे, लेकिन अभी रूप गोस्वामी पाद को उनको क्या करना है, उनको एक महान शिक्षा प्रदान करना है। वो क्या है शिक्षा? वो है अभिधेय तत्व। हमारा अभिधेय यानी प्रोसेस वो रूप गोस्वामी पाद को समझाना है। उसके लिए उनको भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं चाहिए था, इसलिए वो एकांत स्थान में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान किया। तो एकांत वाला स्थान कौन था? वो है दशाश्वमेध घाट। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट के पास लेके गए, और उधर दशाश्वमेध घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किया। रूप गोस्वामी को अभिधेय तत्व दश अश्वमेध घाट, दश मतलब 10, अश्वमेध मतलब वो पहले के जमाने में उस घाट में 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए गए थे, इसलिए उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। तो दशाश्वमेध घाट उस समय में यानी पहले जमाने में सैक्रिफाइस यानी अश्वमेध यज्ञ करना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना, ये पहले की विधि था, सत्युग और त्रेता युग का वो विधि था। लेकिन कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार है, युगावतार है, तो एक कलयुग का जो यज्ञ है उसको 10 दिन तक 10 अश्वमेध घाट में उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान किया। इसलिए हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु अभिधेय तत्व द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है हमारा? संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ कैसे करना चाहिए, हमारा विधि क्या है, भगवत प्राप्ति का विधि क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में कल चर्चा किया। संबंध मतलब क्या है? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है वो जानना, और अभी हम उस संबंध को भूल गए तो उस संबंध को पुनस्थापन करने की विधि क्या है, उसको अभिधेय बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच वी कैन रीएस्टैब्लिश अवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अभिधेय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को द प्रोसेस यानी जो विधि है जिसके द्वारा हम कृष्ण को वापस भूला हुआ जो संबंध है, कृष्ण के प्रति भूला हुआ संबंध को उसको पुनस्थापन कर सकते हैं, उस विधि को हम श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। तो ऐसा कृष्णदास के राज गोस्वामी लिखते हैं कि वृंदारण्यम रासकेरी वार्ताम कालेन लुप्तम निज शक्ति युक्त संचार्ये रूप व्यतनोत् पुनः सह प्रभुर विधौ प्राग इव लोक स्मृतिम। बिफोर द क्रिएशन ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन द लॉर्ड एनलाइटन्ड ब्रह्मा, हम सबको मालूम है भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद क्या हो गया, ये ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। खास करके जो वृंदावन का जो लीला है, भगवान की अलग अलग प्रकार की लीला जो उन्होंने किया, कृष्ण का जो तत्व है वो सब काले काल के कर्म के अनुसार वो लुप्त हो गए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद के हृदय में उसी ज्ञान को संचार किया। पहला भगवान ने ब्रह्मा जी को किया था सृष्टि के आरंभ में, लेकिन वही चीज जो ब्रह्मा जी को दिया गया था उसी ज्ञान को श्री चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी को प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा जी को दिया गया था वही चीज, वही घटना, ऑलमोस्ट सिमिलर घटना कब हुआ, केवल 500 साल पूर्व हुआ, जस्ट 500 ईयर्स बैक। तो रूप गोस्वामी कुड रिसीव द एक्टिविटीज, रिवाइव द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण एंड वृंदावन, एक्टिविटीज वर ऑलमोस्ट लॉस्ट मेमोरी, इन दिस वे ही स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये रूप गोस्वामी पाद का विशेष कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा ये कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं, क्या है, वृंदावन के जो लीलाओं जो लुप्त हो गए थे उनको पुनस्थापन करना चाहते थे और उनकी वार्ता को प्रचार करना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया, तो तीन बातें बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को। आपको ये नोट्स दिया गया उसके अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तीन बातें श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया रूप गोस्वामी पाद। फर्स्ट थिंग, द ट्रूथ अबाउट कृष्ण, कृष्ण तत्व, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति तत्व, द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप कृष्ण, रस तत्व, प्राण, प्रभु कोहिलेनो भागवत सिद्धांत। ये नोट्स के यानी चौथे या पेज के आखिरी श्लोक देखिए, क्योंकि हम रूप गोस्वामी पाद का जो शिक्षा है वो शिक्षा का जो उसके अंदर जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो सब हमने इधर दिया है आपको। जैसे हर डिस्कशन का जो महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं उसका भी हम जिराक्स देंगे। जैसे इसके बाद सनातन शिक्षा है उसका श्लोक हमने अभी तक दिया नहीं है, वो हम कल देंगे, ताकि आपको रूप शिक्षा के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण श्लोक है जो अगर याद करना चाहते हैं तो तुरंत याद कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, इसलिए हमने ये भी सुविधा दिया है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब शिक्षा इरा प्रभु भागवत सिद्धांत, चौथा पेज का आखिरी श्लोक है, द लास्ट श्लोक ऑफ द फोर्थ पेज। कृष्ण तत्व, तो सबसे पहला श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या समझाया, कृष्ण तत्व के बारे में समझाया, ही टोल्ड अबाउट ट्रूथ अबाउट कृष्ण। नंबर टू, भक्ति तत्व, भक्ति होता क्या है उसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और रस तत्व, रस तत्व मीन द साइंस ऑफ रिलेशनशिप, द ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप उन्होंने बताया। प्रांत, प्रांत मतलब कोई इस इन तीन चीजों का सीमाओं तक श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन किया, ये एक्सप्लेन टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दीज तत्व, मतलब इसका मतलब आज तक कोई इन तीन तत्वों का विश्लेषण इस प्रकार कभी हुआ नहीं है जिस जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वर्णन किया। लेकिन ये सारे तीन तत्व किसके आधार के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन किया, प्रभु कोहिलेनो, प्रभु सिखाइला, सिखाइला तो उन्होंने शिक्षा दिया, कैसे शिक्षा दिया, भागवत सिद्धांत, भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर किया, उन्होंने कोई और सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया कि श्रीमद् भागवतम को आधार लेके ये तीन तत्वों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को बताया। लेकिन किस हद तक बताया, प्रांता, प्रांता मतलब कोई सीमा नहीं, टू द एक्सटेंट वेयर यू कैन सी, प्रांता मतलब ये है जहां तक आकाम का नजर जा सकता है उतना तक, कोई इनका सीमा ही नहीं है, इतना हद तक श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किया। हम देख सकते हैं कि आगे वाला श्लोक देखिए, नेक्स्ट वन, फिफ्थ पेज का फर्स्ट श्लोक, रामानंद पाशे यथा सिद्धांत सुनिला, रूप कहे करी तथा सब संचारिला। तो इधर देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को अस्तित्व में क्या समझाया, क्या बताया, उन्होंने ये बताया जो रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना है उन्हीं बातों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, उन्होंने समझाया। इधर एक शब्द है संचारिला, शक्ति संचार, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इस संसार में कोई भी कार्य भगवान के अनुमति के बिना नहीं होता है, भगवान हर चीज अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। लेकिन इधर रूप गोस्वामी पाद को भगवान वर्णन कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं, अभिधेय तत्व को वर्णन कर रहे हैं। अगर वर्णन कर रहे सुना रहे तो हम सुन रहे या रूप गोस्वामी पास सुन रहे तो रूप गोस्वामी पास कैसे समझ पाए, वो भी भगवान की शक्ति की वजह से। तो ये भगवान ने रूप गोस्वामी पाद के हृदय में उन्होंने क्या किया, शक्ति संचार किया। रूप गोस्वामी पाद को कौन सा शक्ति को संचार किया, ये भगवत तत्व जो भागवत सिद्धांत है वो समझने का जो शक्ति है वो रूप गोस्वामी पाद के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संचार किया। वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के हृदय में क्या संचार किया, कौन सा शक्ति को अभिनिवेश किया, कृष्ण तत्व का या रस तत्व का वर्णन करने की शक्ति जो है रामानंद राय को प्रदान किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या किया, उन्होंने कौन सा शक्ति का संचार किया, सनातन गोस्वामी के हृदय में प्रश्न पूछने का जो शक्ति है, भागवत सिद्धांत के बारे में जो प्रश्न जिज्ञासा जो शक्ति है उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रामानंद राय, ये तीनों के संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का शक्तियों को संचार किया। इधर रूप गोस्वामी पाद ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, रूप गोस्वामी पाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी पाद को बुलाए और दशाश्वमेध घाट में बिठाए। हाँ, उधर एक मंदिर है, उधर मंदिर के सामने अभी भी उधर जाएंगे तो उधर दो पत्थर का ये है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और रूप गोस्वामी पाद बैठे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी को बैठा के उन्होंने शिक्षा दिया। लेकिन सनातन शिक्षा में देखते हैं उधर श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में बैठे थे और सनातन गोस्वामी नाना प्रकार का कार्यकलाप करके इधर करके इधर भागते, कैसे भी करके उतने जेल से निकल के उधर भागते, उल्टे रास्ते से निकलते, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का पास आए और प्रश्न पूछे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु जवाब दिए। तो यही है संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सनातन गोस्वामी पाद को प्रश्न पूछने का शक्ति को संचार किया, इधर रूप गोस्वामी पाद को समझने का जो अभिधेय तत्व को समझने का शक्ति को संचार किया। क्योंकि कृष्ण शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। हम आध्यात्मिक ज्ञान को तभी समझ सकते हैं जब हम कृष्ण शक्ति के द्वारा संचारित होते हैं। और कृष्ण शक्ति किस प्रकार हमको प्रदान होता है, एक गुरु के माध्यम के द्वारा हमको एक कृष्ण शक्ति प्राप्त होता है। तो इधर ये रूप गोस्वामी पाद अभिधेय तत्व ये किस गुरु को सूचित करता है, शिक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अभिधेय ज्ञान शिक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और ये संबंध ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है, वो एक दीक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान जो है ये संसार में शक्ति को या आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रवाह है ये भक्तों के द्वारा करते हैं। ये शक्ति संचार असल में कृष्ण शक्ति जो है भक्तों के द्वारा प्रभावित होता है। तो और ये आध्यात्मिक ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं, कृष्ण के कृपा के बिना हम कभी नहीं समझ सकते। वी जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण विदाउट हिज मर्सी। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी का संवाद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहता है ये शक्ति संचार ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शक्ति संचार कैसे मिलता है, श्रद्धा के द्वारा कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से श्रवण करता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु का शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करता है और इन बातों को हम समझ सकते हैं जस्ट बाय हियरिंग। अस्तित्व में इन बौद्धिक बुद्धि के द्वारा हम आध्यात्मिक चीजों को कैसे समझ सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम देखते हैं कि एक साधारण सा अनपढ़ व्यक्ति भी वो श्रद्धा से सुन लेता है, उनको ये भागवत तत्व का विज्ञान अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको बोलेंगे कितना भी बोलो, भले ही बुद्धिमान है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? बिकॉज उनके अंदर वो शक्ति संचार नहीं है, अभी तक भगवान ने उनके अंदर उसको कृपा प्रदान नहीं किया। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, तेषां सतदुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुवन्तं येन माम उपयान्ते। कुछ तो बोलते प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा, अभी तक शक्ति संचार नहीं हुआ है। जब तक शक्ति संचार नहीं होगा तब तक हमको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, ऐसे चल रहा है क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये शक्ति संचार को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, भजताम प्रीतिपूर्वकं, ये विधि को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय पासे यथा सिद्धांत सुनीला रूप कृपा करी, कृपा के द्वारा उन्होंने क्या किया, तथा सब संचारिला। श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट रूप गोस्वामी ऑल द कंक्लूजंस ही हैड हर्ड फ्रॉम रामानंद राय एंड ड्यूली एम्पावर्ड हिम सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड देम। ट्रांसलेशन देखिए, ही ड्यूली एम्पावर्ड, विदाउट कृष्णा एम्पावरिंग अस We cannot understand transcendental subject matters. हम कोई भी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं. तब देखिए रूप गोस्वामी, तो सबसे पहला श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बात को क्या चीज समझाते हैं, बोलते हैं कि the position of the conditioned living entity, second point में, he is eternal part and parcel of Krishna. जीव जो है वो सनातन है और कृष्ण के अंश है, और उनका जो साइज है केश आग्र भाग का 10,000वां हिस्सा है. केशाग्र शुद्ध भागस्य शुद्ध भाग कल्पितस्य च सभागो सभी जीव सभी ज्ञेय. ये जीव का जो साइज है जानो कि ये साइज उसका क्या है, शतदात कल्पितम् कल्पितस्य च. एक 100 भाग कीजिए एक बाल का आग्र भाग का, वो 100 भाग में एक बाल लेके और 100 भाग कीजिए, यानी 10,000वां जो हिस्सा है बाल का आग्र भाग का, ये जीव का साइज है. भले ही शास्त्र इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जीव का साइज है करके, फिर भी इतना भी नहीं है, क्योंकि अगर बाल का आग्र भाग का 10,000वां हिस्सा करें तो क्या होगा. अगर कर भी देंगे तो वो जो साइज है वो भी माप सकते हैं या वो भी भौतिक है. तो जीव का साइज ये भी नहीं है शास्त्र के अनुसार इस प्रकार इसलिए बोला गया, क्योंकि आप बाल का अग्रभाग का 10,000वां जो हिस्सा है वो आप माप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट. तो इस बात को बताने के लिए ये बात बताया गया है कि यू कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ द सोल. अप्रमेयस्य, जैसे भगवान भगवीता बोलते हैं कि आत्मा के बारे में बोलते हैं अप्रमेयस्य, यू कैन नॉट मेजर द सोल. लाइक यू कैन नॉट मेजर, हम बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा को हम माप नहीं सकते, तो वैसे ही आत्मा को माप नहीं सकते. ये नहीं सोचना चाहिए कि बाल का जो अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा का साइज है आत्मा का, आत्मा उससे भी कम है, इतना सूक्ष्म है कि खाली बोलने के लिए एक अंदाज, एक न्याय के अनुसार कि चंद्र शापों को न्याय. जैसे बच्चा रो रहा है, माँ माँ मुझे चांद दिखाओ चांद दिखाओ, चांद कहाँ है दिखाओ, तो माँ बोलती है देखो पेड़ के पीछे. तो बच्चा देख रहा, हाँ पेड़ के पीछे चांद है. क्या पेड़ के पीछे है चांद? चांद तो कहीं और है, पेड़ के पीछे से दिखाई पड़ता है. तो एक खाली एक दृष्टांत के लिए ऐसा इस प्रकार बताया गया है. तब ये जो सूक्ष्म जीव है ये 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है. ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते दो प्रकार की विभाजन है 84 लाख योनियों का. ये छोटा सा जीव ये 84 लाख योनियों में घूमते घूमते दो प्रकार का विभाजन है, एक है स्थावर दूसरा है जंगम, मूविंग एंड नॉन मूविंग. जैसे पेड़ पौधे हैं उनको स्थावर बोलते हैं, जंगम मतलब वो चल सकते हैं, इनको ये प्राणी. There are two categories, moving and non-moving. जो moving है यानी जो चल सकते चल फिर सकते, उनमें कुछ ही मनुष्य, बाकी सब जानवर. 84 लाख योनियों में जलजान अवलक्षण स्थावर लक्ष्मी, उनमें केवल 4 लाख मनुष्य योनियां है, बाकी 80 लाख जो है वो जानवर है, उनको कोई मौका नहीं आध्यात्मिक जीवन का. और ये 4 लाख मनुष्यों में कुछ ही लोग हैं जो संस्कृति को पालन करते हैं. There only very few people. कुछ असंस्कृत लोग हैं जो संस्कृत लोग हैं. Who have got civilization. जो संस्कृत लोग हैं वो केवल बहुत कम है 4 लाख योनियों में जिनके पास संस्कृति है. और जिनके पास संस्कृति है वो भी दो प्रकार के, एक है कुछ वैदिक संस्कृति को पालन करते, कुछ जो है वैदिक संस्कृति को पालन नहीं करते. Those who are civilized, among the civilized people, there are only very few people, बहुत कम लोग हैं जो वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं. और जो लोग वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं उनमें से केवल कुछ ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो वैदिक संस्कृति का मूल उद्देश्य यानी मुक्ति को प्राप्त करना है करके वो मूल उद्देश्य को नहीं जानते, मूल उद्देश्य को जानते हैं, केवल कुछ ही लोग जानते हैं. जो लोग वैदिक संस्कृति का मूल उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना वो चीज को जानते हैं, उनमें से कुछ लोग सिद्ध होते हैं यानी मुक्ति प्राप्त करते हैं. और वो लोग जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कुछ ही लोग यानी गिने चुने प्राय मुश्किल से एक आध व्यक्ति नारायण परायण एक भक्त. तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद को वर्णन कर रहे श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति को प्राप्त करना कितना सौभाग्य की बात है. 84 लाख योनियों में जीव का स्थिति क्या है, और करते करते इतना फिल्ट्रेशन करते करते उनमें से अधिकांश जो है जानवर है, अधिकांश क्या चाहो 80 लाख परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए ऑलमोस्ट 75% ऑफ द लिविंग एंटिटीज दे आर ऑल एनिमल्स, 75% भी ऑलमोस्ट 90% 95% 84 लाख में 80 लाख निकालेंगे ऑलमोस्ट इट इज लाइक मोर देन 95%। इसमें से जो कुछ परसेंटेज बचा है उनमें से कुछ ही लोग क्या करते हैं सभ्यता, दे आर सिविलाइज्ड। अमंग दोज़ हू आर सिविलाइज्ड वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्ट द वैदिक सिविलाइजेशन। ए वैदिक सिविलाइजेशन में वेरी बहुत कम लोग हैं जो वैदिक सभ्यता का मुख्य लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना वो जानते हैं, और उनमें से केवल कुछ ही लोग मुक्त हो जाते हैं, और उन मुक्तों में एक ही व्यक्ति है या प्राय एक व्यक्ति मिल जाता है जो भक्त है। इसलिए बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन कंडीशन सोल्स इसमें नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा कोटिश्वर मणि महामुने, जैसे आपका श्लोकों को जो कोटेशन किया उनमें से आप 5वें पेज में एक श्लोक कोट किया गया, देखिए मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वर महामुने, ओ ग्रेट सेज out of many millions of liberated people who are free from ignorance and out of many millions of siddhas who have who have nearly attained perfection, there is hardly one pure devotee of Narayana, only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful। tab Sri Chaitanya Mahaprabhu ko ye shlok ko quote karte hain, asal aap dekhenge Chaitanya Charitamrita 80% of Chaitanya Charitamrita jo it is nothing but quotations from different Puranas, alag alag shastron se quotations hai, khali 20% Bengali shlokon se varnan hai, wo khali un shlokon ko jodne ke liye varnan, most of the Chaitanya Charitamrita is nothing but quotations from Bhagavata and Bhagavad Gita aur anya Padma Puran Vishnu Puran se quotations hai। to aisa bola jata hai ki agar bhakt banna hai ya bhakt agar wahi vyakti hai jo bahut shant hai प्रशांत आत्मा सुदुर्लभ कोटि शुक्र महामुने, इन सारे इतने सारे लाखों जीवों में एक भक्त बनना मतलब भक्ति को स्वीकार करना ये बहुत सौभाग्य की बात है, इट इज अ वेरी रेयर थिंग। तो बोलते कि वन मस्ट बी पीसफुल इन ऑर्डर टू मेक रियल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, वन हुज माइंड इज एजिटेटेड बाय सच डिजायर्स भक्ति मुक्ति एंड सिद्धि कैन नॉट बी पीसफुल, वन हु सीक्स एनी मटेरियल परफेक्शन मस्ट बी एजिटेटेड एंड रेस्टलेस। केवल एकमात्र व्यक्ति है जो भक्त वो शांत रहता है, बाकी सब मतलब 3 कैटेगरी से बोला गया, कौन कौन है वो सिद्धि कामी मुक्ति कामी भुक्ति कामी। भुक्ति मतलब भौतिक आनंद भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहता है, कुछ लोग है जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये तीनों प्रकार के लोग सकल अशांत सभी लोग अशांत है, एकमात्र भक्ति भक्त एकमात्र व्यक्ति है जो निष्काम रहता है, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। अगर शांति को प्राप्त करना है आपको निष्काम होना पड़ेगा, निष्काम होना मतलब वो केवल भक्त के द्वारा ही संभव है, बाकी सब जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी भी वो लोग ये शांत नहीं हो सकते। तब प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है आप तो बता रहे इतने महान चीज इतना भाग्य भाग्य भक्त बनना भक्ति को स्वीकार करना भक्ति कार्यक्रमों को प्राप्त करना ये साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इतना भाग्य जिसका फूट जाता है तभी उसको मिलता है, तो ऐसा कौन सा क्या कारण है भक्ति को प्राप्त करने का, व्हाट इज द रीजन किसको ये भक्ति मिलता है। हमने देखा है कि नशा कर रहा है नाना प्रकार के गंदा कार्य कर रहा है, कुछ समय के बाद किसी साधु के संग में आके भक्त बन गया, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दानी है नाना प्रकार का वो पुण्य कार्य कर रहा है बहुत सात्विक है लेकिन वो कभी भक्त नहीं बना, इसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से उसको भक्ति प्राप्त हो गया और इतना अच्छा कार्य करने के बाद उसको भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, रिसीविंग द फेवर ऑफ विष्णु एंड वैष्णवास इज द ओनली वे टू गेट भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य बताते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते भाई कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। तो इस श्लोक में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति लता बीज। रूप गोस्वामी पाद का संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो स्टेटमेंट है भक्ति लता बीज इधर से शुरू होता है। The whole description of Rupa Samvad is depending on this Bhakti Latha Bija. Bija means seed. Bija. Kiska bija hai? Bhakti ka bija hai. Bhakti Latha ka bija hai. Jaise aam ka bija hai. आम का बीज बोएंगे तो आम का फल उत्पन्न होता है। हाँ, तो भक्ति का बीज हम अगर बोएंगे तो क्या होगा, वो उगते उगते वो कृष्ण प्रेम नामक फल को प्रदान करता है। तो ये जो भक्ति रता का जो बीज है किसको प्राप्त होता है, उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसको साधु का कृपा प्राप्त हुआ है। कृष्ण और साधु का कृपा जब प्राप्त होता है तब उसके हृदय में भक्ति का लता का बीज मिलता है। ये साधु और कृष्ण का कृपा किसको प्राप्त होगा, इसका कोई कारण नहीं है, इसका अहेतु की। जैसे एक उदाहरण, फेमस उदाहरण सभी आचार्य देते हैं कि मान लीजिए कोई बस ऐसा पिक्चर देखा है, इस फिल्म का गीत गाते हुए वो जा रहा है, घर जा रहा है, वो इधर नताशा बार पे रहता है समझ लीजिएगा, वो जा रहा है तो रास्ते में चलते चलते वो जा रहा है, गा रहा है, अपने ही धुन में हो, लेकिन क्या हुआ, जब उसके पैर में कांटा घुस जाता है, कांटा घुस जाता है, सारा फिल्म का सब जितना भी आनंद सब भूल गया, वो उसको दर्द हो गया, निकाल के बाहर फेंक दिया। तो उसी रास्ते में ऐसा हुआ संयोगवश, कुछ साधु लोग उसी रास्ते में आ रहे और आके अभी मंदिर वापस आश्रम आ गए, वो सो गए। अभी क्या हुआ, मान लीजिए वो व्यक्ति अगर वो रास्ते पे से नहीं जाता पहला, वो कांटा किसको छूटता, एक साधुओं को लग जाता, अभी उसको मिल गया सुकृति, क्यों कैसे किसी को मालूम नहीं। तब अगला दिन वो देखता है कि इस रास्ते में बहुत सारे कांटे पड़े हैं, इधर तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा इस कांटों को निकाल देता हूँ। वो किसी को बुला लेता है, खुद भी निकाल के इधर से सब साफ करके रख देता है। तो उस समय साधु लोग देख रहे हैं, ये तो अच्छा व्यक्ति है, देखो इतना मंदिर के सामने कचरा पड़ा है उसको साफ कर रहा है, तो इससे बात करता हूँ। तो अगला दिन आया तो साधु उस व्यक्ति से मिला, उनके बोला कि हरे कृष्णा आप क्या करते हो। तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है, हम ऐसे ऐसा है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी बोलता है। तो कहते हमारे साथ चलो मंदिर में। तो आज तक वो मंदिर नहीं आया, मंदिर के बाजू में रहते लेकिन आज तक मंदिर में नहीं आए, लेकिन सोचा रहे साधु बोल रहा है, चलो जाके उनके साथ तो जाके आते, अंदर तो है क्या, देख के तो आते हैं। तो अंदर गया तो मंदिर में दर्शन प्राप्त किया, चरणा मिला, प्रसाद मिला, अरे बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछता है कि ये क्या रोज होता है क्या है ऐसा। साधु बोला हाँ हर रोज होता है, आ जाओ। तो हर रोज आना शुरू हो गया उनका। तो एक दिन साधु के संग मिला, उनको हरि नाम का भी जप करने का मौका मिला, वो धीरे 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 से भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। तभी ये साधु और कृष्ण के संपर्क में आने से ही भक्ति प्राप्त होता है, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। इसलिए एक बार वो बीज प्राप्त होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, उस बीज को सिंचन करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक किसान क्या करता है, अपनी जमीन में बीज बोने के बाद उस बीज को उगाने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर रोज पानी डालता है। अभी बस बीज डाल दिया अपने आप उग जाता है, अपने आप नहीं उगता है वो, उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। तो वैसे ही ये भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में बोने के बाद क्या होगा, उस बीज को उगाना पड़ेगा। कैसे उगाएंगे उस बीज को, जैसे एक किसान रोज पानी डाल के उस बीज को बड़ा करता है, पौधे को बड़ा करता है, उसी प्रकार इस भक्ति लता का बीज को उगाने के लिए हमको, यानी हम एक किसान के रूप में हमारे हृदय एक खेती के बराबर है, उस खेती में भक्ति लता का बीज अभी बोया गया है एक साधु के द्वारा, उसको उगाने के लिए हमको रोज पानी डालना पड़ेगा। वो पानी क्या है, श्रवण और कीर्तन, हरि नाम का श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन। ये रोज रोज करने से क्या होगा, ये भक्ति लता का बीज जो है कुछ समय के बाद वो बीज अंकुरित होगा और धीरे धीरे से वो लता जो है वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो लोग पौधे उगाते हैं धीरे धीरे से वो अंकुरित होता है वो सीड, बाद में धीरे धीरे से वो छोटा पौधा बनता है और बढ़ता जाता है। तो वैसे ही जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतने अच्छी तरीके से वो बीज बढ़ता जाएगा, वो पौधा बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ठीक है अभी आज पानी डाल दिया बीच में तो बस बाद में देखेंगे, जब मौका मिलेगा तब पानी डालेंगे, जब टाइम मिलेगा तब मंदिर आएंगे, टाइम मिलेगा जब करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर किसान सोचेगा जब समय मिलेगा जाके पानी डालूंगा तो क्या होगा, वो बीज जो है वो उधर ही नष्ट हो जाएगा, वो सूख जाएगा। तो इसलिए रोज ये कार्यकलाप करना चाहिए, ये श्रवण कीर्तन ये कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। एक अच्छे किसान के रूप में जिस प्रकार वो पौधे को पानी डालने से वो बहुत केयरफुल रहता है, रोज डाला कि नहीं, उसी प्रकार बहुत केयरफुली, बहुत सक्षमता से रोज कृष्ण का नाम का श्रवण कीर्तन करना, भागवत और भगवत गीता का श्रवण करना, कीर्तन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्हेन वाटर्ड बाय कंटिन्यूअस चैंटिंग द सीड ऑफ डिवोशन फ्रूक्टिफाइज एंड ग्रोस। हाँ, ये जो है सीड ऑफ डिवोशन, भक्तिलता बीज क्या हो रहा, अभी धीरे धीरे से बढ़ रहा है, उगते 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 क्या हो रहा है इस भक्तिलता बीज का। ये संसार में ये संसारिक जो लताएं हैं वो किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई डंडा लगना पड़ता है उसके सपोर्ट में निकलता है, लेकिन भक्तिलता बीज को उगने के लिए कोई भौतिक सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके द्वारा रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य और बता रहे कि कोई भक्त बोलता है कि प्रभु जी हमारा जो है भक्ति नष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा भौतिक स्थिति बराबर नहीं है। हाँ, हमारा जो भक्ति है वो कोई भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। कोई भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में व्यक्ति को भक्तिलता बीज उगा सकता है, क्योंकि भक्तिलता बीज जो है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक होने के नाते उसको भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति का भौतिक परिस्थिति का बहाना बनाते हुए व्यक्ति बोलेगा मेरा भक्ति नष्ट हो गया, ये उसका मूर्खता है। एवरी सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं कि हर प्रकार के भक्तों का उदाहरण है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में उन्होंने भक्ति किया है। एक बच्चा गर्भ में प्रहलाद ने भक्ति किया है, बचपन में ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, गर्भ में प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे, नारद मुनि का जो कृष्ण कथा है वो सुन के प्रहलाद ने उन्होंने गर्भ में भक्ति किया, माँ के पेट के गर्भ में, और ध्रुव महाराज बचपन में किया, अम्बरीश महाराज ने क्या किया युवावस्था में उन्होंने भक्ति किया, अजामिल ने वृद्धावस्था में उन्होंने भक्ति भजन किया, भक्ति किया, कृष्ण का नाम उच्चारण किया, और चित्रकेतु नरक में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर अवस्था में कोई भौतिक स्थिति एक बहाना बनाना नहीं चाहिए, ओ मैं तो भी बहुत ग्रस्त हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये है, तो भक्ति नहीं हो रहा है, भक्तिलता बीज का उगने का मौका नहीं मिल रहा है, ये सब बहाना है। तो जिस प्रकार ये भक्तिलता बीज को उगने के लिए या साधारण सा इस संसारिक लताओं को उगने के लिए कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन ये भक्तिलता बीज को उगाने के लिए कोई भौतिक स्थिति का या भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा वो ऊपर उगते 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 क्या होगा, ये ब्रह्मांड के जो अलग अलग लेयर्स है उसको छेदन करते हुए जाएगा भक्तिलता बीज, विरजा नदी को पार करते हुए, वैकुंठ को भी पार करते हुए वो कहां पहुंचेगा, गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक वृंदावन धाम में ये भक्तिलता बीज पहुंच के कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचता है और उधर वो फल उत्पन्न करता है, फल प्रदान करता है। वो क्या फल है, वो है कृष्ण प्रेम। तो ये भक्तिलता बीज को किस प्रकार सिंचन करते हुए हमको कुछ और करने की जरूरत है, जस्ट एड वाटर, पुट वाटर। एक किसान को क्या करने की आवश्यकता है, उसको खाली पानी डालते रहना है, पानी डालते अपने आप उगेगा, उसको कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दैट वे दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच वी कैन अटेन लव ऑफ गॉड। आवर डिवोशन कैन बी नरिश्ड बाय चैंटिंग एंड ग्लोरीफाइंग, हियरिंग एंड चैंटिंग इज द ओनली प्रोसेस ऑफ दिस एज ऑफ कली। उसके बारे में श्री चैतन्य आप आगे बताते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि व्हेन वाटर्ड बाय द कंटिन्यूअस चैंटिंग द सीड ऑफ डिवोशन फ्रूक्टिफाइज एंड ग्रोस पियर्सिंग थ्रू द यूनिवर्सल कवरिंग एंटरिंग द स्पिरिचुअल स्काई वेयर इट कंटिन्यूअस टू ग्रो अंटिल इट रीचेस द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड वेयर इट ब्लूम्स इन फुल फ्लावर ऑफ लव ऑफ गॉड। कृष्ण प्रेम के रूप में वो फल प्रदान करता है। अभी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्या इधर जैसे भक्तिलता बीज है संसार में, साधारण सा वृक्ष जब उदय उगता है तो उधर बहुत सारे घास फूस उत्पन्न होते हैं, देयर मेनी प्लांट्स व्हिच कम। अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, भक्तिलता असली जो लता है वो पानी उसको नहीं मिलेगा, बाकी सब जितने भी घास फूस है उनको पानी मिल जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एक फार्मर क्या करता है, एक अच्छा किसान जितने भी घास फूस है वो सब उखाड़ के फेंक देता है, समूल नष्ट करते हैं, तद्गत मूल हंत्री, समूल उसको निकाल के फेंक देता है। तो वैसे ही एक अच्छे भक्त को क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन तो करना चाहिए, पानी तो डालना चाहिए एक भक्तिलता बीज को उगाने के लिए, लेकिन साथ साथ में इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, अपराधों से बचने का भी ध्यान में रखना चाहिए या अपराधों को हृदय से निकालना चाहिए। तो इस अपराध क्या है, सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है, यह अपराध करने की प्रवृत्ति है। तो जैसे आप देखेंगे कि आप एक अच्छा सुंदर सा बगीचा बनाएंगे, लताओं का बगीचा बनाएंगे, एक तो पानी डालेंगे, एक किसान क्या करता है पानी डालता है जिसके द्वारा सारे जो पेड़ है वृक्ष है वो बड़े होते हैं, और दूसरा क्या करता है एक बड़ा फेंस डालता है, बाउंड्री डालता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाउंड्री से फेंसिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, बांध, जो भी बांध डाल कर देता है, कि वो वायर वायर डाल के सब कंपाउंड वॉल डाल देता है ताकि बाहर से कोई जानवर आके उसको बगीचे को नष्ट ना करे। तो वैसे हमारे हृदय में जो सुंदर भक्ति का जो बगीचा बना है उसको बचाने के लिए क्या करना है, एक बहुत सुंदर सा बांध बांधना है, वी शुड मेक वन नाइस बाउंड्री, तो जिसके द्वारा ये बगीचा जो है अच्छा बच के रहेगा। तो खास करके छोटा मोटा जानवर आ गया तो नष्ट करता है लेकिन उतना नष्ट नहीं करता, लेकिन अगर बड़ा एक हाथी आ गया वो भी मधुमत हाथी आ गया तो बगीचे को एकदम दो मिनट सब कुछ समूल नष्ट कर देता है। तो वैसे भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमको एक बड़ा सा फेंसिंग डालना है। फेंसिंग क्या है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, मधुमत हाथी से बचना चाहिए। ये मधुमत हाथी कौन सा है, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध मतलब वैष्णव का निंदा करना, वैष्णवों को आदर नहीं देना, उनसे झगड़ा करना, उनको देख के हर्षित ना होना, उनके यहाँ दो की खुश ना होना, इस प्रकार के आठ प्रकार के अपराध है, देयर एट काइंड ऑफ ऑफेंसेस। तो वैष्णवों को देख के खुश भी नहीं होना, अरे आ गया ये, इस प्रकार की भावना बना के रखना, ये बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट मैटर, लेकिन अगर इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तक जानना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस मैड एलिफेंट, वी शुड नेवर एवर क्रिटिसाइज ए डिवोटी। हम कभी भी भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव अपराध कोई करता है तो समझ लीजिए तुरंत उसका भक्ति नष्ट हो जाता है, इमीडिएटली। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वैष्णव अपराध ऑफेंडिंग ए डिवोटी। तो ऐसा कौन सा फेंस है, ऐसा कौन सा कंपाउंड वॉल है हमको बांधना चाहिए जिसके द्वारा ये मधुमत हाथी घुस नहीं सकता। What is that fencing by which we can stop the elephant from coming and destroying this garden of devotion? हमारे हृदय में जो भक्ति का जो बगीचा बना है उसको बचाने के लिए मधुमत हाथी से ऐसा कौन सा बांध काम करना है, आजू बाजू में पूरा गार्डन के सामने, उस बांध काम का नाम है वैदिक संस्कृति या वैष्णव एटिकेट कल्चर। अगर कोई भी ये वैदिक संस्कृति वैष्णव एटिकेट को अच्छी तरीके से पालन करता है तो वो कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करेगा। ये अपराध करने की प्रवृत्तियां हमारे हृदय में है, लेकिन वो प्रवृत्तियों को अंदर ही अंदर रखने के लिए हमको क्या करना है, ये वैष्णव एटिकेट को पालन करना है। वैष्णव एटिकेट मतलब वैष्णव सदाचार को पालन करना है, किस प्रकार उठना, किस प्रकार बैठना, किस प्रकार बात करना, किस प्रकार कपड़ा पहनना, क्या करना, कैसे चलना, कैसे बैठना, हर चीज, हर एक सूक्ष्म चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एक्टिविटी ऑफ अस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, चित्त प्रज्ञश्च का भाषा, चित्त प्रज्ञ का क्या भाषा क्या है, वो कैसे बात करते हैं, चित्तधीर किम प्रभाषेत, उनकी भाषा क्या है, इनकी वाणी कैसा है, कैसा है, किम आसीत, कैसे बैठते हैं, व्रजेत किम, किस प्रकार वो चलते हैं। तो ये इन सब चीजों के बारे में हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए। एवरी एक्टिविटी ऑफ डिवोटी शुड बी वेरी मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब हर कार्य करने से पहले, हर चीज करने से पहले, सोचने से पहले, बोलने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए क्या ये उचित व्यवहार है या क्या ये उचित शब्द है। अगर कोई व्यक्ति सचेत होता है इसका, इस जिसमें भले ही हृदय में बहुत सारे कलमश है, वो सब क्या है, वो अंदर अंदर रह जाएगा, वैष्णव अपराध से व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो इतना अमूल्य वस्तु जो कृष्ण भक्ति जो प्राप्त हुआ है वो नष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, वैष्णव अपराध से अगर कोई बचता नहीं तो। मधुमत हाथी से बचना चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि अट्रैक्शन टू टू मेनी फॉलोअर्स और डिजायरिंग लिबरेशन नेग्लेक्टिंग द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी पाद को वर्णन करते श्री चैतन्य महाप्रभु कि अगर कोई व्यक्ति ये निषिद्ध आचार, जीव हिंसा, कूटनाति, जीव बाद में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन चीजों के प्रति वो आकर्षण को खत्म नहीं करता है, वो भी एक प्रकार का अपराध है। ये सूक्ष्म अपराध है। सूक्ष्म अपराध क्या है? सबसे पहला है निषिद्धाचार। अभी तो मैं भक्त हो गया, जो मैं कहता हूं मैं करता हूं भक्ति है, क्योंकि ये सब भौतिकवादी है, इनका ये लोग ये तो नरक जाने वाले हैं। और मैं तो अभी अमूल्य वस्तु जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, मुझे प्राप्त हो गया है, अभी मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, वो बात नहीं चलेगा। हमको सारे जितने भी नियम हैं, शास्त्रों के नियम हैं, आचरण हैं, उनको सबको पालन करना चाहिए। तो ये सारे आचरण को पालन करने के बाद तो भावना आता है, तभी तो हम भक्त हो गए, मैं अपना आचरण मैं कर लूंगा, तो क्या बाहर जाके प्रचार वचार करना। जिनको आना है मंदिर में आ जाएगा, जिनको सुकृति है वो आ जाएगा, जिसके कर्मों में है वो आ जाएगा, मंदिर में दर्शन करेगा। तो हम तो बैठे रहेंगे, इंतजार करते हैं लोगों का आने का, तब ऐसा कोई आने वाला नहीं है। अगर वो इस प्रकार के भावना से सोचता, वो क्या है? जीव हिंसा है। मैं तो अपना भजन करता हूं, जिनको आना है आने दो, अस्तित्व में ये जो भावना है वो क्या है? ये जीव हिंसा है। ये सोचना कि मैं किसी को निंदा नहीं करता हूं, किसी को मारता नहीं हूं, किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूं, तो इसलिए मैं अहिंसावादी हूं, ये गलत बात है। जो व्यक्ति प्रचार करता है वो वास्तविकता में अहिंसा को पालन कर रहा है। जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है, भले वो भजन कर रहा है, वो हिंसक है, वो हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंसा का परिभाषा क्या है? मान लीजिए एक डॉक्टर रास्ते में जा रहा है और देखा एक व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर जो है पूरा कट गया और बहुत सारा खून बह रहा है। डॉक्टर देखता है, ठीक है मेरा पेशेंट तो नहीं है वो, मैं चले जाऊंगा रास्ते में, तो क्या भले ही वो उसने एक्सीडेंट नहीं किया, कोई और की वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ, ये डॉक्टर इस प्रकार की भावना बना के रखा है उसके प्रति, उसका दुख का निवारण करने का उनका क्षमता होने पर भी उनका दुख को निवारण नहीं करना है, निवारण करने की प्रयास नहीं कर रहा है, तो इसलिए डॉक्टर जो है हिंसा कर रहा है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के बाद, कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनको दूसरों को देने के लिए हम तत्पर नहीं रहेंगे, तो असलियत में वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, वो भक्त जो है जीव हिंसा कर रहा है। प्रभुपाद जी 13वें अध्याय भगवद गीता के 13वें अध्याय में अलग अलग गुणों के वर्णन करते हुए जो अहिंसा इसका ऊपर व्याख्या करते हुए बोलते हैं, इस बात को वर्णन करते हैं कि इस संसार में सभी लोग कृष्ण भावना का अभाव के वजह से दुखी है। Everybody is suffering in this world just because of the lack of Krishna consciousness. और कृष्ण भक्ति का अभाव को पूरा करने के लिए आपके पास उनको देने का क्षमता है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? आपके वजह से वो दुखी है। Because of you he is suffering. So we should be very careful about this. तो एक है निषिद्धाचार, दूसरा अपराध क्या है, दूसरा अनर्थ क्या है? जीव हिंसा। तो व्यक्ति प्रचार करने बैठ गया, सब कुछ ठीक है, अब क्या डिप्लोमेसी, कूटनाति मतलब वो प्रचार तो कर रहा है, वो बोल तो रहा है, लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करता है। वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो ये जो डिप्लोमेसी है इसको खत्म करना है। तो व्यक्ति ये कूटनाति को भी वो पार कर लिया, तब क्या होगा? मैं इतना मेहनत कर रहा, इतना प्रचार कर रहा, थोड़ा सुविधा तो मिलना चाहिए, कुछ तो मुझे लाभ आना चाहिए, कुछ तो धन प्राप्त होना चाहिए, गाड़ी तो चाहिए कम से कम। तो इस प्रकार की लाभ को हेतु रखते हुए, कुछ भौतिक चीजों को प्राप्त करने के हेतु में रखते हुए कोई प्रचार करता है, कोई भक्ति कार्यक्रम करता है, तो वो क्या है? अगला अपराध है, अगला अनर्थ है। ये सारे अनर्थ अगर हम लोग बहुत सचेत होते हुए, कॉन्शियस होते हुए, द कॉन्शियस माइंड इफ वी डोंट ट्राई टू रिमूव इट आउट ऑफ द हार्ट, हृदय से उसको उखाड़ के फेंकने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो सारा श्रवण कीर्तन का जो फल है वो कहाँ जा रहा है? अपराधों को प्रवृत्त करने के लिए जा रहा है, अपराधों को उन्नति करने के लिए जा रहा है। जिस प्रकार किसान का जो डाला हुआ खाद और पानी वगैरह है वो सब घास फूस दे देता है और घास फूस उगना शुरू करता है। कुछ समय के बाद देखा कि अरे वो मेरा जो लता कहाँ गया, उसका बीज कहाँ गया, तो बीज तो कहाँ गए, छोटा सा हो गया, बाकी सब घास इतना बड़ा हो गया, अपराध बहुत बड़ा हो गया है, अपराध की प्रवृत्तियां हमारे हृदय में बढ़ गया है, लेकिन भक्ति जो है वो कम हो जाता है। इसलिए वी शुड बी ऑलवेज वेरी कॉन्शियस, वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अभी निषिद्धाचार, बाद में जीव हिंसा, बाद में कूटनाति, ये तीन का चर्चा किया, उसके बाद लाभ। कम से कम मुझे लाभ तो नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा दान दक्षिणा नहीं दे रहा, वो तो कम से कम ठीक है, वो नहीं देगा चलेगा, कम से कम मुझे पूजा तो होना चाहिए, हजर तो देना चाहिए कम से कम। हाँ, तो ये आदर भावना की लालसा, पूजा प्राप्त करने की लालसा, ये भी एक प्रकार का अपराध है। हाँ, ये भी एक प्रकार का अनर्थ है, ये हमारी भक्ति को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी छठा चीज एक चीज है, सिक्स्थ वन, ये बहुत सारा डेंजरस है। हमने निषिद्ध आचार को पार कर लिया, उसके बाद जीव हिंसा को पार कर लिया, बाद में हुटन आदि को भी पार कर लिया, उसके बाद हाँ पूजा लाभ, ये पांच चीजों को भी जय कर लिया, मुझे इन सब चीजों का कोई लालसा नहीं है। लेकिन एक चीज की लालसा है, अगर प्रचार करूंगा या प्रचारक है तो मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, मैं ही एक ही व्यक्ति हूं, सब लोग मेरे पास ही आना चाहिए, मैं ही एकमात्र गुरु हूं इस सारे संसार का, मैं ही जगत गुरु हूं। तो इस प्रकार की जो भावना है, प्रतिष्ठा है, ये बहुत भयानक सा एक अनर्थ है। ये सब अनर्थ हृदय में अलग अलग जगह अलग अलग कोने में चुपचाप छुपे हुए हैं, तो इसलिए उन सबको उखाड़ के फेंकना बहुत आवश्यक है। Offenses should be removed by chanting the holy names of Krishna. So, इस प्रकार some further considerations of devotional service, no desire should be had devotee except for the desire for advancement in Krishna consciousness, Krishna bhavana में प्रगति करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। Devotee should minimize bodily demands enough to simply keep body and soul together. आत्मा और शरीर को एक जगह रखने से रखने के लिए या आत्मा शरीर को देखभाल करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही कार्य करना चाहिए। He should engage in his senses in service of Krishna. He should reject all kinds of liberations or personal sense gratification. Devotee should be totally absorbed in pure devotional service. If he is haunted by the two witches of material attraction and two witches, that is material benefit and liberation, he cannot experience the transcendental bliss of devotional service. ये सारे जो बातें हैं, इन बातों को श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बात को तीन बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में कहा है। तो ये तीन श्लोक इस प्रकार है, वो है कि भक्तिरसामृत सिंधु में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद ने निमंत्रित किया है। तीन श्लोकों को हम कल आपको प्रिंट आउट देंगे, जेरॉक्स देंगे, तो उसमें आपको ये तीन श्लोक मिल जाएगा। ये तीन श्लोकों का सार ये है। तो कल बाकी वो तीन श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा और बाकी जो चीजें हैं रस तत्व उसके बारे में हम कुछ श्लोकों को साथ में हम चर्चा करेंगे। तो कल आप जरा टाइम पे आएंगे तो वील गिव द फर्दर नोट्स एंड रूप गोस्वामी बात का चर्चा कल समाप्त करेंगे। परसों सनातन गोस्वामी का स्टोरी और सनातन गोस्वामी का शिक्षा का शुरुआत की बात है। सनातन गोस्वामी पाद का चर्चा तीन दिन कम से कम चलेगा, उसके अंदर अवतार, अवतारों का पीछे जो उद्देश्य है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कृष्णा भगवान के अलग अलग विस्तार हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा भी है कि हमने ये भी सोचा है कि आपको अंत में आखिरी दो दिन में एक छोटा सा परीक्षा भी दिया जाएगा ना, इसमें बहुत सरल से प्रश्न होंगे तो आप आराम से उसको आंसर कर सकते हो। वन वर्ड आंसर्स रहेगा या ए बी सी डी, वो टिक मार करना होगा बस। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने जैसे कल आपको कहा है जो व्यक्ति ये पांच संवादों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेता है, मनन कर लेता है और याद भी कर लेता है, ये समझ लीजिए कि सारा वैदिक सिद्धांत इन पांच डिस्कशंस में, ऑल द वैदिक फिलॉसफी इट्स देयर इन दिस फाइव डिस्कशंस, संबंध अभिधेय प्रयोजनम, संबंध विचार और अभिधेय विचार। संबंध ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया, अभिधेय ज्ञान रूप गोस्वामी को प्रदान किया और प्रयोजन ज्ञान जो है रामानंद राय को प्रदान किया, रामानंद राय के संवाद में। अभिधेय विचार किसमें, प्रकाश आनंद सरस्वती, और संबंध विचार सारमठाचार्य। सो दिस इज द समरी ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। रोज आइए 8 बजे, वी विल गो फर्दर। ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा तेज में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे चलेगा, क्या करें। हरे कृष्णा, गो एंड हैव अ सावन। किसी को अगर नोट्स नहीं मिला है तो आपको कल मिल जाएगा दूसरे कोर्ट के।